वजह से एक वो चीज़ नहीं है, वो कोहरेंस नहीं है जो इंडिया में पाया जाता है, क्योंकि इंडिया में बाय एंड लार्ज डेमोक्रेसी चाहे शैम डेमोक्रेसी है लेकिन है ना डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी
में ढोंग रचाया हुआ पर है
सर,
तो कोई नहीं
ना, तो मैं तो कहा ना कि उसमें ये नहीं है,
ढोंग रचाया,
ढोंग रचाया, सर
ढोंग रचाया हुआ है। आप देख लें इस वक्त तो इंसानियत
नहीं, इस वक्त तो खैर जी इस वक्त तो ये इंतहा है सिचुएशन की, वही देखिए ना, वो तो मैं अमेरिकन से कहता हूँ कि यार वो नरेंद्र मोदी जिसको आपने
एंटर नहीं होने देते थे,
नहीं सर वीजा इनकार किया हुआ था कि तीनों सस्पेक्ट टेररिज्म, आज उसका वजह वेलकम हो रहा है।
एग्जैक्टली अच्छा जब हम ये सारी बातें करें, मैं आपकी एक बात, मैंने आपकी बातों को बड़े गौर से सुना, आपने जब ईरान पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात की बात की कि आज तक 70 साल तक हम डिपेंड करते रहे वेस्ट के ऊपर तो आज हम कैसे मुड़ सकते हैं, मगर साहब जंगो जदल के बीच में तो फेवर्स बदलती रहती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देख लें रशिया वॉज अमेरिका का और इनका एलाई था, दुश्मनी किससे थी, जर्मनी के साथ थी, आज जर्मनी उनका एलाई है और रशिया बेचारा नुक्कर पे साइड पे लग के खड़ा हुआ
उसमें। तो आरफा जी ये बताइए कि कितना टाइम लगा, देखिए मैं ये बैलेंस को शिफ्ट करने के खिलाफ नहीं हूँ, इस वक्त
वही 70 साल
नहीं, वो तो 70 साल तो हमने जो किया सो किया, अब जो है टाइम लगता है इस किस्म की शिफ्ट बैलेंस में, और जंगों के दरमियान नहीं लगता, क्योंकि जंगों के दरमियान दोनों तरफ से हॉट टेम्परामेंट होता है। अब अगर बिल्कुल से मोहाल यूरोप जो है वो आपकी एक्सपोर्ट पे के ऊपर कोई क्या करता है, आपको पता है ना कि 55 मिलियन डॉलर का अभी जो पेनल्टी हुई है बैंक पर,
जी सर
2016
इसलिए हुई है कि उस बैंक ने यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्ट है उसके मुताबिक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बेजाबतगियों का मुजाहरा किया था। हम उन मुल्कों से इस मुल्कों में आने की वजह से भी आम लोग जो हैं वो कानून की पासदारी नहीं करते, उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग सही नहीं रखी थी जिसकी वजह से ये फाइन हुआ।
नहीं आप मुझे इसको जो है वो इस तरह से लें कि 2016 की फाइल बेकायदगियों की बन रही है,
बेकायदगियों,
ठीक है जी,
बेकायदगियों की
बन रही है, तो उसमें मैं आपको बताऊं मैन्युफैक्चरर हर्नोवर ट्रस्ट और दूसरे अमेरिकन बैंक देखे ना, उनकी इरेगुलरिटीज इससे भी ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि ठीक है स्लैप ऑन द रिस्ट और आगे बढ़ जाते हैं। 2016 की जो है ये उस दिन जिस दिन इमरान खान का जहाज मॉस्को पर लैंड करता है, ये सिम्बॉलिक पेनल्टी क्या है, ये सिंबॉलिक पेनल्टी नहीं है, इट्स ए सिंबॉलिक डिस्प्लेजर ओवर इमरान खान लैंडिंग इन मॉस्को,
प्रेशर टैक्टिक
जो भी आप
प्रेशर टैक्टिक
नहीं डिस्प्लेजर। और अगर इसी तरह वो आगे बढ़े तो आप ये बताइए हम कहाँ खड़े हैं फिर, क्योंकि अभी तक पहले आप अपनी
स्टैंड
नहीं, पहले आप अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करें ना, मेरी अप्रोच ये है कि पहले आप अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके शिफ्ट करें कि जहां पर इस किस्म की पाबंदियां अगर लगें तो आप डील कर सके, आप हैंडीकैप ना हो, आप बॉटल नेक ना हो, आप मजबूर ना हो उनकी बात मानने पे। इस वक्त जो है यही सूरत है, इस वक्त की जो सूरत है।
अजीम मियां साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, कॉलर्स भी आए साथ में और माजी जमाल साहब अपने और जीशान इस वक्त हेडफोन्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, हम इन कॉलर्स को अपने साथ लेते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया, आप अगर कहीं स्टैटिक महसूस हो और जरूर 770 शाम के आवर्स में आखिरी 20-40 मिनट्स में डेफिनेटली हम स्टैटिक हुआ करते हैं। हमारा लोकल नंबर जो है वो 6478724900 जिस पे आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.eawaz.com, आई डोंट नो पाकिस्तानियों क्यों इतना सखाना पैंदा है, बिकॉज आर रिलेशनशिप इज इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप है, चाहे वो वेबसाइट से हो, चाहे वो टेलीविजन से हो, चाहे रेडियो से हो, ई आवाज दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक आवाज। हमारी वेबसाइट पे आप प्रोग्राम को देख सकते हैं, रेडियो को सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी सेक्शन जो यहीं पे इन हाउस तैयार होता है लेटेस्ट न्यूज है, उर्दू सेक्शन जो जिस पे खास तवज्जो आजकल दी जा रही है। वी हैव लिटिल इशू एट द मोमेंट और मैं इसके फौरन बाद आपको लेके चलती हूँ विलेज टेस्ट पे, अजीम भाई भी उस दिन मौजूद थे और बड़े दिनों के बाद उनसे वहाँ मुलाकात हुई थी, वेरी डिलिशियस फूड, चाहे कुन्ना गोश्त है, चाहे कढ़ाई चिकन की है, बीफ की है, गोट की कढ़ाई है, आपने दाल और तंदूर की रोटी मक्खन लगी खा लें, क्या बात है साहब, बहुत मजे की। GTA का सबसे बड़ा बफे आपको यहाँ पे मिलता है, 4141 डिक्सी रोड पे, नाम है इसका विलेज टेस्ट, फैसल चट्ठा साहब। अगर आपने वीकली मंथली डील्स करनी है आप वो भी कर सकते हैं। आप फैसल चट्ठा साहब का नंबर 6477744888, 7744888। डॉक्टर नाजिया हमारी स्पॉन्सर है। अगर आपकी डेंटल प्रॉब्लम है, आज मैंने अजीम भाई से ये भी पूछना है कि भाई आपके दांत इतने अच्छे कैसे हैं, मगर साहब बाज़ोकात गलतियां हो जाती हैं, ब्रश किए बगैर उठ जाते हैं, मीठा खा के सो जाते हैं बाज़ोकात, तो चोरी की टॉफियां बड़ी खाई होती हैं मेरे जैसों ने। तो अगर आपकी डेंटल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर नाजिया रहमान स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक है, नॉट वन शी हैज़ टू क्लिनिक्स, 150 येलो एवंस बुलेवार्ड पे हैं, द सेकंड क्लिनिक इज 65 माउंट पैलियर स्ट्रीट इन मिसिसागा ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन वेस्ट में, दैट इज मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव के इंटरसेक्शन पे, 9058721100 उनका नंबर है। इन्हीं स्पॉन्सर्स के तवस्सुत से मैं बातचीत कर रही हूँ। कॉलर्स आप बिल्कुल, जो लोग कॉल में शामिल हुए हैं उनको हम लेंगे, अजीमिया साहब का जवाब होगा, सवाल आपका होगा। शुक्रिया ज़रूर कीजिएगा, एक बड़ा आदमी और मैं यकीनन अपने सीनियर्स की शुक्रगुजार हूँ। वी एग्री टू डिसएग्री, राय हर एक की अपनी हो सकती है, मगर जो तजुर्बाकार लोग हैं उनको एहतराम देने में मेरी और आपकी इज्जत है, ये हमारी वैल्यूज़ हमको सिखाया करती होती हैं। और पॉलिटिकली आप लोगों का इख्तलाफ हो सकता है, मेरी पार्टी पीटीआई है, मेरी पार्टी एमक्यूएम है, मेरी पार्टी नून है, भाई आपको मुबारक हो जो भी आपकी पार्टी है, मेरी पार्टी पाकिस्तान है, दैट्स ऑल व्हाट इट इज। पहले कॉल को मैं अपने साथ लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइएगा और बात।
मेरा नाम नवाज है। मैं पाकिस्तान की जो ड्रॉबैक है, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, उसकी मेन वजह क्या है, ये अजीम साहब से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में तासुबियत और दूसरी चीज, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से वो परवान चढ़ रहा है और उसको चढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि पाकिस्तान इंडिया में कितने सूबे, अजीम साहब को सब पता है कितने सूबे बने हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं सूबे बन रहे, वो पाकिस्तान जो है वो पैरों पे नहीं बल्कि गाड़ी फोर व्हील ट्रिप पे भागेगा फिर पाकिस्तान। मकसद ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को परवान, अगर सही तरीके से, अगर डेमोक्रेसी है तो उसको सही तरीके से ये डिक्टेटरशिप क्यों है फिर, ये सूबे को कंट्रोल जो है, बजाय इसके कि लोग पढ़े लिखे लोग आए, तासुबियत खत्म हो और लोगों को जॉब मिले, लोगों को रोजगार मिले वहाँ पे। मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ कराची को ही अगर वो छोड़ दें, किसी मकसद ये कि वहाँ पे डेमोक्रेसी सही तरह आ जाए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जरूरत नहीं है किसी के पास भीख मांगने की, IMF को ले जाए उधर।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
इतना पोटेंशियल है, सिर्फ इतने शहरों में इतना पोटेंशियल है, मकसद ये कि सिर्फ एक शहर की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर अमेरिका नेशनलाइज करके पाकिस्तानियों को जिस तरीके से बर्बाद किया है, मकसद ये कि लोग बताते नहीं है, क्यों नहीं बताते हैं कि भाई भुट्टो ने बर्बाद कर दिया पूरे पाकिस्तान को।
सवाल मेरे भाई, अगर आपने अपना सवाल करें तो ज्यादा बेहतर है।
हम एक बंदा, बहुत शुक्रिया सर आपने कॉल किया, एहसान मंद हूँ आपकी, जवाब सुनिए।
जी नवाज साहब बिल्कुल,
एक बात अजीम भाई, मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, वी विल कीप आंसर्स एंड क्वेश्चंस वेरी ब्रीफ ताकि मैक्सिमम लोग आपसे बात करें।
बड़ी मेहरबानी नवाज साहब। असल में आपने अपने सवाल का जो है जवाब खुद ही दे दिया कि भाई डेमोक्रेसी उसकी, और जब डेमोक्रेसी करप्ट हो, डिक्टेटरशिप हो, ये सारी चीजें जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को रोका है, नंबर वन। नंबर दो के जमहूरियत जो है उसको भी जो रोका है, तो वो ये है कि आप पाकिस्तान की 70 साल की जिंदगी में से देखें तो इसमें से 33-34 साल जो है वो डायरेक्ट मार्शल लॉ की उसमें मतलब गुजरे हैं, तो मार्शल लॉ जो है उसमें डिसिप्लिन तो आ जाता है, लेकिन तरक्की जो है उसको लाना जरा मुश्किल इसलिए होता है कि अवाम के एतमाद में कमी होती है। हमारा जो है सिलसिला वो बजाय सियासी पार्टियों के या सियासी लीडरों की वफादारी के, हमारा जैसा कि मेरी बहन ने कहा अपना कि भाई आरिफन है कि अभी हमारी लॉयल्टी जो है वो मिट्टी के साथ होनी चाहिए, इसलिए कि उस मिट्टी ने हमें सब दिया, ये हुकूमतें तो आनी जानी चीजें हैं, लीडरशिप आज जो है इख्तदार में है, कल माजूली में है, परसों सियासी पनाह में है, ये सारी चीजें हैं। आप ये देखें ना कि भाई यहाँ पर हम कनाडा में आने वाले जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं वहां से लोग, वो मजबूरन मतलब वहां से होते हैं, वी आर इकोनॉमिक माइग्रेंट, फॉर द सिंपल रीजन कि हम जो है वहां पर एक तो डेमोक्रेसी जो है स्टेबल नहीं हो पाई, दूसरी ये कि हमें अच्छी लीडरशिप जो है वो वाकई नहीं मिली, चाहे आप मतलब कि आपका ताल्लुक बेनजीर से हो, आपका ताल्लुक नवाज शरीफ से हो, इमरान खान से हो, किसी से भी हो, कसर वाशिद जो हमारे जो लीडर आए हैं, जो लीडरशिप आई है उसमें से ढंग की लीडरशिप डेमोक्रेटिकली रूटेड जो है वो आपको आज तक नहीं मिली। जब नहीं मिली है तो फिर देखिए कि बराबर वाले की पड़ोसी की फसल में जो है अगर प्रॉपर फर्टिलाइजर और प्रॉपर पानी और उसको एक मुसलसल आबो हवा मिलती रही है तो भाई उसकी फसल अच्छी होने में और हमारी फसल खराब होने में जो है वो एक बिल्कुल मंतकी उसका वजूद मौजूद है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाज साहब आपकी कॉल का। अगली कॉल जी, अपना नाम बताते हुए अपना सवाल कीजिएगा, कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग इसका फायदा ले सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा जी अजीम साहब, सबसे पहले कि आपका तजर्बा सुना,
नाम बताते चलिए।
मैं हुमायूं शेख अर्ज कर रहा हूँ जनाब, जो है ना माशाल्लाह आपने काफी
सर आप सवाल करें, मैंने वही रिक्वेस्ट किया कि मुख्तसर रखें।
मुख्तसर ये है कि आपको याद होगा कि लियाकत अली साहब जो है ना रशिया का दौरा कैंसिल कर,
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो मुंतकिल का वो करके अमेरिका चले गए थे, उसके
अंदर नहीं, मेरी बात सुन लेना प्लीज। और फिर आपका पता वो ये है कि फिर अमेरिका ने कागजात से पता चलता उन्हें मरवाया लियाकत अली को, और अमेरिका ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया या हमारे माशी दहशतगर्द हुक्मरानों ने किसी ने भी नहीं पहुंचाया। और रशिया का जो दौरा है ना, और यह है कि मैं आपको ये एक अपना साथी थे
सवाल
ये है, आपका सवाल ये है कि ये लोग जो है इनको अगर आप आंखों में आंखें डाल करके देखे ना तो ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर इनके हाथ जोड़ेंगे तो मुर्दा लाश को भी ये ठुड्डे मारेंगे।
बिल्कुल सही है,
इमरान ने इस वक्त जो कर रहा है प्लीज ये जरा मेरा सुन लेना, आपने कहा ना इमरान खान जो कह रहा है वो इज्जत दिलवा रहा है, तो आप देख रहे इंशाल्लाह पाकिस्तान को मिलेगी। और यही लोग है ना इस वक्त जितने भी है ना मगरबी लीडर उनको ऐसे जैसे कि वो अल्लाह ताला माफ करे को पागल हो गया।
सर जी बड़ी मेहरबानी,
बहुत शुक्रिया,
बड़ी मेहरबानी। लेकिन देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि बिल्कुल आप सही कहते हैं कि जरूरत के साथ, लेकिन आप ये कोई घर का मतलब निजाम नहीं होता कि एक दिन आप ट्रक पर सामान डालें और किसी दूसरे घर में मुंतकिल हो जाएं। ये जो पॉलिसियां होती हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिसियां बायलैटरल रिलेशन होते हैं, ये इनके डेवलप होने में और खराब होने में टाइम लगता है। कोई एक वाकया जो है वो नहीं होता, बल्कि ताल्लुकात खराब करने में भी टाइम लगता है, बनाने में भी टाइम लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले, लेकिन आप देखिए हुमायूं साहब पाकिस्तान में वो लीडर पैदा कीजिए कि जो आंखों में आंखें डालने की मतलब है कि अपना जरूरत रखते हो, और उसके बाद यह है कि जो हालात हैं उनको आप ऐसा कीजिए कि जिसमें आप में इतनी जरूरत और इतना तफाखुर आए। होता यह है कि वहां से मैं तंग आता हूं तो मैं जाके अमेरिका में मतलब है कि फॉरन इमिग्रेशन ले लेता हूं या कनाडा में इमिग्रेशन ले लेता हूं। जाती किरदार के तौर से हमें ये मजबूरियां हैं, ये मैं नहीं कहता कि भाई क्यों लेते हैं, लेकिन यह है कि ये मजबूरियां होती है ना। तो आप पहली बात तो यह है कि हमारे यहां ऐसी लीडरशिप हो जो आंखों में आंखें डाल के अमरीका से भी बात करे और रूस से भी ताल्लुकात को बनाए। आपने 20-25 साल जो है वो रूस को आपने अफगानिस्तान में आपने लड़ाई की है, आप एक ऐसे मुल्क के साथ एकदम जंग के दौरान इमीडिएट दोस्ती करने ऐसे जा रहे हैं कि जैसे वो कल आपको पाइपलाइन जो है वो हवा में डाल के और दे देगा, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज ठहराव के साथ करनी है। आप बिल्कुल आप अपने ताल्लुकात को बैलेंस करें, मैं खुद इसके हक में हूं, लेकिन ये वही है कि चीन के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हुए हैं तो ये मुझे बताइए कि 3.5 साल तक आपने सीपैक पे काम क्यों रोके रखा है, किसके दबाव में रोके रखा है, क्यों नहीं आंखों में आंखें डाल के आपने बात की, क्यों कि आंखों में आंखें डाल के बात करने की जरूरत करने वाला लीडर हमें अभी तक नहीं मिला।
थैंक यू वेरी मच। और ये चाइना के एक सीपैक के जो सरकर्दा रुकन है उनका मैं बयान सुन भी रही थी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो हॉल्ट कर देती है। ये तो एक अलमिया है ना सर, और आप ही की हुकूमतें पहले रहीं, चाहे नवाज शरीफ की रहीं चाहे पीपल्स पार्टी की रहीं, एक गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट अमेरिका में,
इमरान की हुकूमत भी मेरी हुकूमत है
नहीं अमेरिका में ही की जो पॉलिसी एक बन गई है ना तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट ने भी आके उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, एक्सेप्ट कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में थोड़ी मामलात मुख्तलिफ हुए और अभी भी जो बाइडन साहब कर रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट ओबामा डिड उन्हीं को आगे लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हर हुकूमत अपना मामला लेके चलती है। اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں ہم. جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام, میرا نام امجد ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک الزام ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا سیاستدانوں پہ؟
بڑی پیاری بڑی پیاری آپ نے بات کی. عمران خان بہت پیارا لیڈر ہو جاتا اگر اس کو چار سیٹیں اور دلوا دیتے. وہ جو 115-116 پہ آ کے روک دیا نا, ہوں بےچارا منتا ہی کر کر کے تھک گیا کہ بھائی پائر بیٹھا رہے. آپ سوچئے گا کہ فواد چودھری جو ہے واٹ پرسن, اس کو ایک وزارت سے ہٹایا دوسری میں لے کے گیا, کیونکہ اگر اس کو وزارت سے نکالتے ہیں تو وہ کہے گا میں فلور کراس کر رہا ہوں واپس جا رہا ہوں. یہ تو
ٹھیک ہے نا, لیکن جو ترجمان باہر کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں, شہباز گل کو تو تمیز سکھائے نا عمران صاحب کہ تم میری ترجمانی کرتے ہو کس بدتمیز لینگویج میں کرتے ہو,
بہت بدتمیز.
ٹھیک ہے, تو یعنی اس کو نہیں روکتے ہو. تو اگر پرائم منسٹر جو ہے, دیکھیے پرائم منسٹر جو ہے ملک کا سر کا تاج ہوتا ہے, ہمارا قابل احترام ہے کسی بھی پارٹی سے آئے, عمران خان سے ہو یا نواز شریف کوئی بھی ہو, ان کو اپنا ایک کنڈکٹ اور رول ماڈل ہوتے ہیں پورے ملک کے اندر. آپ یہ دیکھیے کہ ترجمانی کا رول ماڈل ہمارے پاس کیا ہے, آپ کے سامنے ہے
شہباز گل,
شہباز گل ہے, فیاض چوہان ہے,
فواد چوہدری,
فواد چوہدری صاحب ہیں. یہ دیکھیے نا, یہ چیزیں جو ہیں, ایک تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی, پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک امجد صاحب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کا بڑا تنازع چل رہا ہے کہ کس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ, آپ کہہ کے تو رک جاتے ہیں کہ جی یہ بیوروکریسی ہے. بعض کہتے ہیں نہیں جی بیوروکریسی سے آگے کی ہے, بعض جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنا فوج کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں.
میرا خیال ہے
بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ مجھے تعریف بتائیں تو پھر میں اس کو ریئیکٹ کروں, لیکن آپ کی بات درست ہے. ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اپنے طور سے کنگ میکنگ, جس کو کہتے ہیں نا کنگ میکرز, اپنے آپ کے ازیوم کر لیا کہ ہمارا رول کنگ میکر کا ہے, اینڈ وی نو دا نیشنل انٹرسٹ. نتیجہ یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں لیکن الیکشن رگڈ بھی ہو جاتے ہیں. جی
بہت شکریہ. آپ نے جب بات کی, اکثر لوگ میری بدقسمتی کے لوگ اس کو آرمی سمجھتے ہیں, آرمی پاکستان کا بہترین ادارہ ہے. آئی تھنک بیوروکریسی جو ہے نا, یہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں نا, خدا کی پناہ, خدا کی پناہ, مطلب آپ سوچئے گا کہ جین نہیں دیں گے بیوروکریٹس, دے آر دی ورسٹ پیپل ان پاکستان.
دیکھیں ہمیں فوج کی لازمی ضرورت ہے, بالکل, سرحدوں کا کون سنبھالے گا, ہمیں ضرورت ہے, ہمارے دل جان سے قریب ہے. لیکن یہ جو جیسے اسی طرح بیوروکریسی ہے, اگر بیوروکریسی نہیں ہوگی تو عارفہ یہ مجھے بتائیں کہ ملک کا نظام کیسے چلے گا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں,
نا خدا ہیں نہیں بیوروکریٹس, نا خدا,
ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے جو ڈیفائنڈ رولز ہیں نا وہ ادا کریں, کہ جس میں بارڈر کی حفاظت جو ہے, پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ فوج کا کام ہو, اسٹیبلشمنٹ کا کام ہو کہ پاکستان کے مفاد کے مطابق جو ہے یہ پوری انتظامی مشنری جو ہے,
یعنی یہ پورے کے پورے نظام کا جو انحصار ہے وہ عورت کے دماغ کے اوپر ہے. وہ میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی, اس نے کہا کہ مرد کا دماغ جو ہے نا کمپارٹمنٹس ہیں, عورت کے دماغ کی ساری تاریں ملی ہوئی ہیں.
یہ تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے,
مگر آئی تھنک بیوروکریٹس. مجھے اشر عظیم کے ساتھ پروگرام یاد آ گیا. اشر عظیم کسٹمز میں ہوا کرتے ہوتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے 80 گاڑیوں کو پکڑا, اور یہ 80 گاڑیاں جو جن پہ ٹیکس نہیں پے کیا گیا تھا, اگلے دن 3 دن کے بعد جب میں آفس, مجھے اپریشیٹ بھی کیا گیا, 3 دن کے بعد آفس گیا تو وہاں پہ 10 کے 12 گاڑیاں کھڑی تھیں, وہ جو غریب لوگوں کی گاڑیاں تھیں, 40,000 کی, 1,00,000 کی, 50,000 کی, وہ گاڑیاں کھڑی رہ گئی. جو کروڑ کروڑ, 2-2 کروڑ کی گاڑیاں تھیں وہ نکل گئی تھیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو مانیکا صاحب ہیں ان کا بیٹا, اتنی شرم کی بات ہے کہ وہ شراب پی کے غالب روڈ کے اوپر پکڑا گیا, اس کا کزن بھی ساتھ تھا. اچھا وہ دو وڈیرے نکل گئے, وہ جو تیسرا دوست تھا اس کو اگلے دن انہوں نے چھڑایا. یہ تو میں کہتی ہوں کہ دا ورسٹ تھنگ از بیوروکریسی, آئی بلیو سو. کہ ڈپٹی کمشنر آپ کا ہے, وہ مانیکا صاحب جب پاک پتن بھی جا رہے تھے بی بی کے میاں, ٹھیک, تو مانیکا صاحب کو, یعنی بیوروکریٹس کو اب بھی یہ فنڈ, مطلب اپنے ان کے کہے پہ بیوروکریٹ چلتے ہیں, چاہے ڈپٹی کمشنر ہے, کمشنر ہے, جو کوئی بھی ہے, وہ ان غریب آدمی کی سنوائی نہیں ہے, ان کی سنوائی زیادہ ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہاں جی بات کریں, اپنا نام بتائیں, اور عظیم بھائی یہاں پہ پھنس گئے آج. وہ
جی بھائی السلام علیکم, فاروق ہاشمی بول رہا ہوں.
جی فاروق ہاشمی بات کیجیے آپ میاں صاحب سے.
اچھا عظیم بھائی کو بہت بہت ویلکم ہوں یہاں پہ.
इनके लिए तो दो तीन घंटे भी काफी हैं, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं जब ये बात शुरू करते हैं। मैं शॉर्ट रखूंगा कि एक तो मुझे ये बताएं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मॉडल क्या पाकिस्तान में कभी अप्लाई होने का चांस हो सकता है? अच्छा, नंबर दूसरा ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इनके पास, इमरान साहब के पास एडवाइजर कौन हैं जो वॉच रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, और उन्होंने क्यों डिसाइड नहीं किया कि ये अब इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए? और तीसरा सवाल है, बस आखिरी सवाल है कि स्टूडेंट्स और जो हमारे शहरी वहां पे यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उनको बिफोर टाइम जब ये पता था कि अटैक होना है और अगर नहीं भी होना है तो उनको पहले क्यों नहीं निकाल लिया गया, और ताकि अगर सूरत हाल मतलब सही रहती तो आप वापस चले आते? बस मुझे सिर्फ आपके, अब मैं बैठूंगा तो बहुत सारे सवाल करूंगा।
थैंक यू सर।
आपके तीन सवाल हैं, तो पहला सवाल तो मैं क्या हूँ भूल, लेकिन अगर आप मुझे याद दिलाएं कि पहला सवाल क्या था। देखिए,
एडवाइजर कौन है?
एडवाइजर कौन है? देखिए, जहां तक एडवाइजरी की बात है, वो तो देखिए, अब ये आप नहीं कह सकते कि भाई वो भी इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ है। वो इमरान खान जो इस वक्त सबसे बड़े वॉच डॉग हैं फॉरेन पॉलिसी के या डिप्लोमेसी के, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वजीर खारजा हैं और सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं इमरान खान साहब की पार्टी के। कल कला को अगर इमरान खान साहब सबूक दोष किसी वजह से होते हैं तो वो इस पार्टी के हेड भी होंगे और इमकान ये भी है कि
अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे।
ठीक है,
ही इज लुकिंग फॉर दैट
जी। तो अब ये है कि वो, और बड़ी मुलायम बात करते हैं क्योंकि पीरों के घराने से उनका ताल्लुक है माशाल्लाह, तो आरिफाना कलाम भी जानते हैं, अच्छा जुबान भी उनकी बड़ी मीठी है। लेकिन मैं हमेशा उनसे बरमला सामने कहता हूँ कि सरकार खाली मुलायम अल्फाज और चबा चबा के उनकी अदायगी जो है, इसका नाम डिप्लोमेसी नहीं है। डिप्लोमेसी इज समवेयर एल्स। डिप्लोमेसी है जिसके टारगेट्स होते हैं, अचीव किए जाते हैं और ये सारा सिलसिला होता है। आपको ये पता है कि भाई हम मतलब है कि चूंकि अमरीकी इत्तेहादी रहे हैं, वेस्ट के इत्तेहादी रहे हैं, वेस्ट से हर चीज़ को हमने डिक्टेशन में लिया है, और हमारे यहाँ एक एटीट्यूड ये भी बन गया है कि वेस्ट को ना आपने नाराज करना है, ना उनसे जवाबी डायलॉग करना है, बल्कि जो वहां से फरमाइश आ जाए उसको आपने हुक्म समझ के तामील करना है। तो हमारी खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी जो है वो ये मतलब कि अपना खामी रही है, और उसकी वजह से हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो काम नहीं करती। रही ये स्कूल वाली बात, वो जो वहां पर सफीर साहब थे वो अपनी फैमिली को लेकर आ गए हैं पहले और पीछे बच्चों को छोड़ा है, ये जो है ये काम जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसलिए कि वो हमारी कौम की अमानत है, ये हमारी कौम के तनख्वाहदार मुलाजिम थे।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मगर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ को भी बावर कराना चाहती हूँ। आप देखिए, इंडिया को हम सारे अप्रिशिएट करते हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स भी स्ट्रैंडेड थे, देर आर सम स्टूडेंट हेल्प बाय पाकिस्तान एम्बेसी, आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, बल्कि एक स्टूडेंट की डेथ भी वहाँ पे हुई है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंडियन थे ना, हमें वैसे भी रोने की आदत ज्यादा है, आई एम सो सॉरी टू से।
एक और सवाल था उनका यूएई का,
यूएई का
नहीं, यूएई का मॉडल जो है वो जनाब हमारे यहाँ
ऐसा ही नहीं है।
एक तो ये कि वहाँ पर खानदानी और मौरूसी मामलात हैं, हम पहले ही मौरूसी सियासत भर पाए, तो इस वजह से एक तो ये है कि वहां पर वो खानदानों की हुकूमत है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अजमैन हो, फुजेरा हो, या मतलब कि अबू धाबी हो, तो वो तो एक खानदानों की हुकूमत है, और उन्होंने मिलकर, और वो भी आपको बताऊं कि अहले मगरिब जो है उन्होंने तसव्वुर दिया कि मिलकर आप अपने रिसोर्सेज जो है जब इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर आपके लिए तरक्की होगी। और ये बात इसलिए दुरुस्त है कि दुबई के पास तेल नहीं है, लेकिन आज सारी दुनिया दुबई दुबई कर रही है, और वहां वो जाती है, वहां बिजनेस भी है, वहां हर चीज मौजूद है। उसकी वजह यह है कि अबू धाबी के वसाइल थे, दुबई की जमीन थी, ये सारी आबाद हुई है। तो वो मॉडल इसलिए हमारे नहीं बन सकता कि हमारे यहां भी फिर आप ये चाहते हैं कि वडेरों की हुकूमत से हम पहले तंग हैं, चंद एक वडेरे अगर मिलकर इस किस्म की कोई यूनियन या एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए फिर मजीद तकलीफ दे
और मसले का शिकार होगी। अनफॉर्चुनेटली मैं अजीमिया साहब, अल्लाह जानता है कि मैं दिल से एहतराम करती हूँ, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इन जैसे बड़े लोग पाकिस्तान के जागीरदाराना निज़ाम को अगर तोड़ सके ना, जो इन्होंने नहीं तोड़ा, हमारे जर्नलिस्ट और मियाँ साहब जैसे जो अजीम लोग हैं, अगर लिखने पे आते और प्रोपेगंडा करने पे आते, हिंदुस्तान में तोड़ दिया ना उस निज़ाम को, ये लोग क्यों नहीं तोड़वा सके? इसकी कसूरवार अजीम भाई हम आपको ठहराते हैं, आपको और आप जैसे बड़े लोगों को, कि अनफॉर्चुनेटली पीरी फकीरी का निज़ाम, जागीरदारा निज़ाम, और ये जागीरदार कौन है, ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेज जाने से पहले घोड़ी पाल मुरब्बे और पैसे और जमीनें देके गया था, कहीं मजहब की डुगडुगी बजी, कहीं ये जमीनें दी गई, जिन्होंने अपनी फेवर्स को बेचा था फॉर टू गोरास, यानी मुखबरियां की थी उसके नतीजे में, अपने लोगों को मरवाया था, अपने लोगों को मरवाया था, उसके बदले में बरतानियों से ये जमीनें और पैसा हासिल किया था। आप लोगों का सबसे बड़ा हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है कि उन्होंने उस निजाम को खत्म किया, आप लोग उस निजाम को नहीं खत्म किया।
अरे जी, उस निजाम को जो है पंडित नेहरू जो है उसी ने खत्म कर दिया था उसी जमाने में जमींदारी को। आप देखिए कि ऊपर से एक्शन जो है, देखिए वो चीज मुल्क में नाफिज होती है जो जिसके अंदर ताकत के साथ हुकूमत की तरफ से आता है वो सबसे पहले नाफिज होता है। सहाफी का काम है कि एजुकेट करना, कल्टीवेट करना।
अगर सर आप लोगों ने ज्यादा लिखा नहीं है इसके बारे में?
नहीं, काफी लिखा है, जो जो लिख सकते हैं उन्होंने लिखा है, जो जो नहीं लिख सके और अगर वो मतलब कि किसी
आपने इसको खबर रखा, आपने इसको प्रोपेगंडा नहीं किया। अगर आप प्रोपेगंडा करते हो तो गवर्नमेंट डेफिनेटली,
उसकी वजह यह है कि देखिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको मफरत करे, हमारे मतलब के वानिया, उन्होंने भी आखिर में ये कहा था कि मेरे पास यही मतलब खोटे सिक्के हैं। वो बड़े वही जागीरदार थे जो ममदोर तहसील के थे, फलां तहसीलों के थे, बड़े नवाब थे, वरना आज आपके पास आरिफा अगर आप तारीख में जाएं तो कश्मीर का मसला खड़ा ही ना होता। अगर तहसील ममदोट और ये जो है ये दो तहसीलें आपके पास आ जाती जैसे फार्मूला था तो उसके बाद में भारत के लिए कश्मीर तक एक्सेस का कोई रास्ता ही नहीं था।
सर कश्मीर का भी आप जिक्र करते हैं, बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान आए थे तो कश्मीर, इमरान खान साहब आए थे तो आप ही ने कश्मीर के मामले को रेज किया था। मेरी बहुत बड़ी रिजर्वेशन है कि महमूदा मुफ्ती की बात कर लें, अब्दुल्ला साहब की बात कर लें, आगे मोरसी रियासत में उनके बच्चों के पास पोजीशंस आई हैं, दे ओनली मिंटेड मनी ऑन कश्मीर। आप आज ये मौलाना क्या हैं फजलुर रहमान साहब, कितना अरसा प्रेसिडेंट रहे हैं उस कमेटी के, दे ओनली मिंटेड मनी ऑन दैट, नन ऑफ देम दे वर्कड टू डू एनीथिंग फॉर द कश्मीरीज। अगली कॉल की तरफ बढ़ती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम, मैं जावेद इकबाल बोल रहा हूँ।
जी जावेद भाई, आपके कॉल का शुक्रिया। जी
जी, मैंने छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन है कि अगर ये तहरीक आदम इतमाद कामयाब हो जाती है और तो उसमें आई थिंक सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, ओपन बैलेट होगा, तो पता चल जाएगा पीटीए के कौन से लोग जो हैं अगर वफादारी चेंज करते हैं,
क्रॉस करते हैं
तो जी जी, तो फिर वो नाअहल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आई थिंक नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट नहीं दे सकते आप आई थिंक पार्टी के खिलाफ। तो उसके बाद अगर असेंबली तो टूटती है तो पंजाब असेंबली भी टूट जाएगी, वहां पे भी अक्सरियत नहीं है पीटीआई के पास, तो केपी के असेंबली का क्या बनेगा इस पर प्लीज थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बताएं।
या केपी के में तो इनकी अक्सरियत है।
देखिए बात यह है कि अगर वो सब ये खुल जाएगा और तो वो अपनी पार्टी से नाअहल होंगे, एज ए एमएनए तो नाअहल वो नहीं होंगे, पार्टी जो है वो बाकायदा उसको लिखना पड़ेगा कि ये हमारी पार्टी से डिफेक्ट कर गए हैं।
मगर अदम इस्तेहकाम तो हो जाएगा।
ठीक है, अदम इस्तेहकाम तो देखिए अगर ये अदम इसकी जो है अदम एतमाद की तहरीक आती है तो बिल्कुल जब कभी भी आई है या जब कभी हुकूमत वहां तब्दील हुई है तो अदम इस्तेहकाम वहां पर आया है। और ये नहीं है मोइन कुरैशी की, जब हुकूमत बनी तब भी अदम इस्तेहकाम हुआ, जब कभी हुकूमत की तब्दीली होती है, अमेरिका में तब्दीली होती है तो इकोनॉमी जो है कुछ अरसे के लिए सफर करती है। लेकिन अब देखना यह है कि यह सफर जो इकोनॉमी सफर करेगी जो ऑलरेडी बैड शेप में है, क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि भाई जब हुकूमत के खिलाफ हुकूमत जमहूरियत की बात करती है, असेंबली की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है और कहती है डेमोक्रेसी मुल्क में चल रही है, तो अगर डेमोक्रेसी मुल्क में चल रही है तो डेमोक्रेसी का जो नकायस है उनको भी सामने रख के ही आपने चलाना है। तो वो तो मतलब है कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, अगर अदम इस्तेहकाम आती है और वो कामयाब होती है और उसमें जो है वो अपना पीटीआई के लोग भी शामिल होते हैं तो ये तो एक वहां पर फैक्ट है। अब आप ये देख लेना कि जिस वक्त मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत आई थी तो उस वक्त उसमें पीपल पार्टी के कितने लोग डिफेक्ट करके आए हुए थे, वहां से डिफेक्ट हफीज शेख जो आपका वजीर खजाना है वही पीपल पार्टी का वजीर खजाना था।
सर आज मेजॉरिटी डिफेक्टेड लोग हैं,
डिफेक्टेड लोग हैं। तो अब उस ये जो है ना ये इस चीज को बुराई को चाहे वो बुराई मैं करूं आप करें आरफा करें उसूली तौर से बुराई बुराई है।
इस वक्त भी बेशुमार लोग क्रॉस करके ही आए हुए हैं ना, आप फवाद चौधरी को देख ले, ही क्रॉस्ड मेनी टाइम्स
जी, मुशर्रफ साहब के साथ मैंने इनको
दिस इज हिस्ट्री,
बिल्कुल पीपल पार्टी में थे
हिस्ट्री। अगर आपकी इजाजत हो तो हम
हाँ जी केपी का देखिए केपी की अगर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो चलती भी रहे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो बिल आखिर वो भी जो है वहां पर भी ये अगर ये बगावत होगी तो इसके असरात केपी की असेंबली पर भी जाएंगे। और आपको पता है कि केपी और बलोचिस्तान की असेंबलियां पंजाब की असेंबली के मुकाबले में और सिंध की असेंबली के मुकाबले में छोटी हैं। 22 से 24 अगर जो है आपके बलोचिस्तान में उनमें से 10-15 अगर जो है एमपीएस इधर हो जाए तो हुकूमत बदल जाती
है। आज बलोचिस्तान से भी रिजर्वेशन आ गई है ना, और परवेज खटक साहब ने कुछ अर्सा पहले बाद में बल्कि उन्होंने सॉरी भी कर दिया था, उन्होंने कहा था अगर हम चाहें तो हम आपको वजीर आजम से हमारी वजह से वजीर आजम है खटक साहब ने। अगर यहाँ पे मैं एक कमर्शियल ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा हट के इंटरनेशनल लेवल पे भी आना चाहती हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो मतलब ये पांच कॉल हमारे साथ हैं। आप अमेरिका में रहते हैं, तेल महंगा हुआ, कितना महंगा हुआ, क्यों महंगा हुआ
जी,
क्यों महंगा हुआ,
शॉर्टेज सप्लाई क्वेश्चन ऑफ
डॉलर 47 डॉलर मिनिमम कितनी गई थी, 43 डॉलर पर बैरल पे भी गया है पेट्रोल,
नेगेटिव में भी गया,
नेगेटिव में भी गया,
नेगेटिव जमाने में खरीदने वाला कोई नहीं,
ये 6 महीने 8 महीने पहले की
स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं थी बिल्कुल,
ये 6 महीने 8 महीने पहले की बात है, नेगेटिव में भी गया। आज सुबह 110-111 रुपए पर बैरल था,
114 डॉलर
मगर इस वक्त 116, शाम तक 116 पे इसने जाना था। जब पेट्रोल महंगा होगा तो आपकी बाकी तमाम सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, सब्जी महंगी होगी, एवरीथिंग विल बी। पाकिस्तान में महंगाई है तो आईएमएफ ने कर दी, इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल की कीमत ज्यादा है, वीट की कीमत ज्यादा हुई, तो पाकिस्तान कोई जन्नत के बीच में तो बैठा नहीं हुआ, पाकिस्तान हैज टू हैव द सेम प्रॉब्लम। क्विक एक मिनट,
मैं आपको आपसे इस मामले में इसलिए डिफर करता हूं कि देखिए कनाडा में आया कोविड आया, ठीक है, इन्फ्लेशन भी आया, सब कुछ आया, गवर्नमेंट ने कॉमन मैन को रिलीफ दी, फाइनेंशियल रिलीफ दी। सुनिए पाकिस्तान के अंदर तो इस किस्म की फैसिलिटीज नहीं है ना, वहां तो जो गरीब है,
तीसरी दुनिया का मुल्क है
सर, तीसरी दुनिया का अगर मुल्क है ना तो फिर आप उसके लिए अरेंज करें प्रूडेंस,
कहां से लाएं
आप, क्यों आप गैस आपने क्यों नहीं सर्दियों में खरीदी ये मुझे बताएं। नदीम बाबर साहब जो एडवाइजर थे आपके और पेट्रोलियम का काम मदद कर रहे थे, आज माशाल्लाह से टैक्सेस में बिलियंस लेके बैठ गए, कैसे बैठ गए, किसी ने उसको पूछा नहीं,
जुल्फी भी वापस आ गए मेरा कल इंग्लैंड,
बुखारी उधर है, ठीक है, वो पेट्रोल के ऑफिस चेक जो है वो आपकी इकोनॉमी को बांध गए आईएमएफ से, आपने उन्हें जाने दी।
मगर सर आईएमएफ पे पहली दफा कौन गया था, आईएमएफ ये पहली दफा तो नहीं गए, आईएमएफ तो एक अरसे से
आईएमएफ का हर साल हम मतलब अरफा हर साल जाते हैं, सारे और भी मुल्क जाते हैं, हम अकेले नहीं है, लेकिन हम निगोशिएट करने में अभी तरीन साहब और ये अपना रजा बाकर वगैरह सब न्यूयॉर्क आए हुए थे, ठीक है, रजा बाकर मतलब कि बात करने के रवादार नहीं किसी पाकिस्तानी के साथ, वहीं खड़े कह लगे नहीं आप तरीन साहब से बात करें, तरीन साहब से बात करें, हाँ जी आप फिक्र ना करें। और उसके बाद ये नहीं है, ये मैं उस दिन का वाक्य बता रहा हूँ कि नहीं फिक्र ना करें मियां साहब, हम बस 4 दिन के अंदर हम ये सारा लेकर
अमेरिका खरीद के जा रहे हैं,
हाँ, और आईएमएफ से हमने जो जो कहा है मान लिया उन्होंने, 4 दिन के बाद वो वापस वहां वाशिंगटन थे, 15-20 दिन के बाद भी तो आईएमएफ ने अभी तक कोई नोटिस नहीं निकाला था क्या,
मगर सर दुनिया जहां नहीं
आया सर, बात ये नहीं,
बाय द वे आईएमएफ आपको पता होगा यूनाइटेड अरब अमारात को भी शायद ग्रे लिस्ट में दोबारा डालते हैं क्योंकि वो कहते हैं फंड्स की बेजाब्तगियां पाई गई हैं, तो आईएमएफ जब रूलिंग अथॉरिटी है तो फिर रूलिंग
नहीं जी, अब ये नहीं है, ये तो हिसाब का सर्कल चल रहा है, जितनी अकवाम उनकी लिस्ट पर है इंशाल्लाह इन सबकी एक एक दफा बारी आएगी, चाहे वो साथ दें,
क्योंकि यूनाइटेड अरब अमारात के भी हाथ पे चिपेट पड़ी है, उसने भी आपको पता है वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उसने भी न्यूट्रल हुआ वो हुआ। तो उसको फौरी तौर पे आईएमएफ ने सजा दी कि उन्होंने कहा कि बेजाब्तगियों की वजह से यूनाइटेड
अरब अमारात, फिर आप इस बात से एग्री कर गई कि जिस जिसने न्यूट्रलिटी या मास्को जाके मदाकरात किए
सर जी, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है। अगली कॉल मेरे, हम आउट ऑफ द टाइम, आई हैव ओनली 10 मोर मिनट्स, तो प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अगली कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, अगली कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अगली जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए
जी। अजीम साहब आपने कहा कि शबाज गिल की जुबान देखें कितनी गंदी है, तो मुझे आप जरा ये बताएं कि मरियम की कितनी अच्छी है और शबाज शरीफ की कितनी अच्छी है और जरदारी और बिलावल की जो 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं और हर जुबान हर गंदी से गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, और आप तो मुझे लगता है कि इमरान खान के खिलाफ बैठे होंगे यहाँ पे बात करने के लिए। और दूसरा, पाकिस्तान को जितना नुकसान मौलवियों ने पहुंचाया है किसी ने भी नहीं पहुंचाया। जो जब कोई बाप नहीं मानता उसको यहूदी का लेबल लगा देते हैं, चलो जी इसको लगा
काफर का, काफर का लेबल।
जी जी बिल्कुल जी, मैं छोटा करता हूँ। और फजलुरहमान का जो उनसे है वो कहता था वो माँ ने वो बच्चा नहीं जाना जो पाकिस्तान की पे बना सके, उसको आपने अपने सर पे बिठाया हुआ है।
बहुत शुक्रिया
हुजूर, बड़ी मेहरबानी। ये सब आपका ख्याल है और आपके ख्याल का मुझे बड़ा पूरा पूरा एहतराम है। मैं इमरान की मतलब है इमरान की मुखालफत के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान की मिट्टी की जो है ना हिमायत, उसके लिए यहाँ बैठा हूँ। नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर किसी दूसरे की जुबान मरियम की जुबान को ले ले, मैं उसको भी नहीं अप्रूव करता। मैं किसी ऐसी गंदी जुबान को अप्रूव नहीं करता कि जो मेरे बच्चे देखें सीखें और मेरे सामने बोले। तो इस लिहाज से जुबान गंदी किसी की भी हो वो गलत है, चाहे वो नवाज शरीफ पार्टी का हो, चाहे वो मतलब पीपल्स पार्टी का हो, और चाहे वो पीटीआई का हो। गुनाह गुनाह है, बुराई बुराई है, और ये जो है बदतहजीबी जो है पब्लिकली वो है। लेकिन उसमें शहबाज गिल का नाम इसलिए लेता हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने पिछले 70 साल के रिकॉर्ड तोड़कर बदतमीजी की का मुजाहरा कर रहे हैं,
और जो कि अच्छी बात नहीं है। चार्ज है यूनिवर्सिटी के लिहाज से भी, जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं इनका खात्मा होना चाहिए, वो चार्ज भी इनके ऊपर चला।
आरिफा वही नहीं, ये मलेशियन यूनिवर्सिटी के है, मैंने मेरे पास इनका पूरा डाटा है, अगर आप लेके जाएं। इनके पास कोई अमेरिका में पढ़ाने का जिसको तजुर्बा कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शैम्पलेन जो है, मेरे भाई वहां से जरा आप भी हिम्मत करें सहाफियों पे बोझ डालने के बजाय, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन में जरा आप शहबाज गिल का फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन मांग लें, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद में आप उसको जो है जो भी आप मुनासिब समझे आप उसके साथ करें। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि अगर मतलब कि कोई इंसान बुराई बोल रहा है तो आप दूसरी बुराई करें। क्या आप ये चाहेंगे कि आपके किसी छोटे ने अगर एक बुराई की है तो आप भी जवाब में बुराई का जवाब रखते हैं? नहीं, आप कहेंगे बुराई बुराई है। बुराई चाहे वो मरियम की हो, चाहे वो किसी पीपल पार्टी की हो, इमरान की हो, वो बुराई है। और वो वजीर आजम के तर्जुमान है, इस लिहाज से उनकी तर्जुमानी जितनी भी है उसका रिफ्लेक्शन इमरान खान पर होता है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अजीम मियां साहब मेरे साथ हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वंडरफुल जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। और इस जगह पे जहाँ 400 दुनिया के जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उस जगह पे आके स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच डिफरेंट पोजीशंस को विन करते हुए प्रेसिडेंट के होते तक गए हैं। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, डॉक्टर जेसन स्टैनले हमारे साथ होंगे नेक्स्ट वीक, हमारी फेसबुक पे ये प्रोग्राम होगा। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर जेसन स्टैनले, अमेरिकन फिलोसोफर जैकब यूरोस्की ये प्रोफेसर हैं फिलोसफी के, उसके जैकब यूरोस्की डिपार्टमेंट में येल यूनिवर्सिटी में। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में फिलोसफी पे ब्लॉग्स भी लिखे हैं। इसके अलावा डॉक्टरेट की डिग्री के बाद स्टैनले एक्सेप्टेड स्टैनले में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपनी पोजीशन एक्सेप्ट की। इनकी बुक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल इंटरेस्ट 1 2007 का अमेरिकन फिलोसफिकल एसोसिएशन बुक का प्राइज भी जीता। हिंदुस्तान की सूरत हाल पे ये बात करेंगे हमारे साथ, और बड़ी करीब से इन्होंने उसका मुतालिया किया है जिसके साथ हमसे वो जिक्र करेंगे। शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का, बजमैक्स इंटरनेट की सर्विस के लिए 4168000900 उनका नंबर है। डॉक्टर पद्मजा फैमिली डेंटिस्ट के लिए स्कारब्रो के इलाके से 4162997466 उनका नंबर है। अगर आप घर के लिए खूबसूरत फर्नीचर लेना चाहते हैं तो कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस ब्रैम्पटन में स्टील्स एंड रदरफोर्ड के इंटरसेक्शन पे जहां होम डिपो का प्लाजा है। एक मेला होने जा रहा है विच इज 20th of March को ये मेला होगा। इट्स अ फैमिली इवेंट जिसमें आप अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ जाइएगा। बड़ा अरसा घरों के बीच में बंद रहे हैं, जिसमें स्टॉल्स होंगे और रमज़ान से पहले ये क्योंकि एक प्रोग्राम है, फन फेयर है। संडे को ये प्रोग्राम होगा 20 मार्च को, तो आपने इसमें ज़रूर आना है अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या अगर आप अपना स्टॉल, कपड़े के बेशुमार स्टॉल्स हैं, खाने के बेशुमार ऐसे मज़े मज़े के खाने, उस दिन मैं सुन रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, तो रूबी अशरफ को कॉल कर लीजिएगा। इट विल बी अ ग्रेट, इवन अगर आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की तशहीर करना चाहते हैं तो बी देयर, بہت لوگ آئیں گے, بے شمار پارکنگ ہے. دس از نارتھ آف 407 ڈکسی اینڈ ایڈوانس از دی مین انٹرسیکشن. یہ بالکل کارنر نارتھ ویسٹ کارنر بنتا ہے اور اس کا نام ہے گیلیکسی گرینڈ کنونشن سینٹر 200 ایڈوانس بولی وارڈ پہ. یہ ہے روبی صاحب کا نمبر 647-812-2400. میاں صاحب میرے ساتھ, میں اگلی کال کی طرف بڑھوں گی. میری معذرت ہے, دیکھیے اسپانسرز کے بنا تو میں ایم ناٹ فنڈیڈ بائی اینی بڈی. دیز آر دا اسپانسرز ہو فنڈ اس فار دیز پروگرامز. انڈرسٹینڈ مائی ایشو, مائی پرابلم. جی السلام علیکم. جی ہیلو, اگلی کال. جی السلام علیکم. جی
السلام علیکم.
تھوڑی پیشنس رکھیا کرو, اڈی جتی گواچ نہ جایا کرو. جی سر اپنا نام بتائیے اور سوال کیجیے.
احسن نام ہے میرا.
احسن
جی.
جی
میں دن صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو روسی صدر سے 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے, تو 3 گھنٹے انہوں نے کیا ان کو حاصل ہوا ہے پاکستان کے لیے؟ کیا کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے کوئی ان سے اچھی بات کی ہے, یا کہ اگر کیونکہ روس جو ہے نا پہلے کشمیر کے مسئلے پہ یو این او کی قرارداد کو ویٹو کر چکا ہے, اور کیا انہوں نے کوئی یقین دہانی حاصل کی ہے کہ آئندہ پوٹن صاحب کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کا ساتھ دیں گے؟
بہت اچھا
جی,
سوال ہے.
کشمیر تو ابھی جو ہے روس کے ساتھ اس معاملے پر جو ہے بات نہیں ہوئی, نہ ہی یہ مسئلہ آیا. وہاں پر جو عمران خان صاحب کے جو ایجنڈا جو مجھے معلوم ہے اس میں تو یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے معاشی تعاون یا صنعتی تعاون جو ہے اس کے لیے گئے تھے, کیونکہ باقی جہاں تک اسلحے کا معاملہ ہے تو وہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ دورہ کر چکے ہیں اور وہ معاملات الگ بدل کے اس میں پیراڈائم میں چلتے ہیں, اور یہاں جو ہے یہ گئے تھے اس کے لیے کہ تعاون ہو پاکستان کی اکانومی کے لیے. اور کیونکہ دیکھیے روس نے ہمیں بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک اسٹیل مل بنا کے دی تھی کراچی میں, اور وہ بہت بڑی ایشیا کی بہت بڑی,
اور جس کا بیڑا غرق ہمارے پولیٹیشنز نے
کیا, بالکل پولیٹیشنز نے کیا ہے, اور وہ نہیں مس مینج کی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے گئے تھے, کشمیر موضوع نہیں تھا. جہاں تک رہا 3 گھنٹے کی بات, تو دیکھیے میں ان راہداریوں میں میری ایک عمر گزری ہے جہاں نیگوسیشنز ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کو تقریباً کوئی 25 منٹ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا, تو وہ 25 جو ہے انہوں نے
کھانے کی بات کرتے
جی
کھانے کی بات
نہیں 25 منٹ کی ملاقات تھی, لیکن ان کے ترجمان کہنے لگے کہ وہ جی وہ تقریباً 45 منٹ کی ملاقات رہی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے ٹائم دکھایا کہ جو لکھا ہوا ٹائم تھا کہ اس ٹائم پہ. تو میں نے کہا جناب اس میں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کتنا ٹائم ہوا؟ 4.5 منٹ چڑھ لے, کیونکہ وہ جہاں اوپر ملاقات تھی وہ سیڑھیاں تھیں, ایلیویٹر نہیں تھا. میں نے کہا اس کے بعد کیا مطلب ہے, کیا حالات کیا پوچھے گئے؟ کہ یہ پوچھا کہ آپ کی فیملی ٹھیک ہے, فلاں ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کے بعد جو ہے سارا کچھ نکالنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 20 منٹ کی ملاقات تھی. تو ان کے ترجمان جو ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے تھے, وہ کہنے لگے ہاں یار ٹھیک ہے, لیکن عوام کو ہمیں یہی بتانا ہے کہ 45 ہے. تو 3 گھنٹے کی جو ملاقات آپ کہہ رہے ہیں وہ 3 گھنٹے کی ملاقات کے اندر یہ رسم و راہ و رسم اور یہ جو ہے نا پروٹوکال تھا, یہ ساری چیزیں ان کو بھی آپ نے شامل کر کے یہ 3 گھنٹے کرتے ہیں. ترجمان ہمیشہ بڑھا کے بتاتے ہیں, وہ تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وہاں گئے, کیونکہ یہ اب آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں آپ کو کہوں کہ مجھے پاکستان کے جو ترجمان ہیں اور پاکستان کے جتنے یہ ڈپلومیٹس ہیں ان سے مجھے ایک شکایت ہے, وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ ان سے پوچھے پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ سے, تو وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ کہا کشمیر پر, میں نے مطلب اناج کے بارے میں یہ کہا, کووڈ کے بارے میں یہ کہا, میں نے یہ کہا. تو میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جب وہ یہ ساری چیزیں گنا چکتے ہیں تو آخر میں کہتا ہوں جی وہ تو آپ نے یہ کہا, انہوں نے کیا جواب دیا ہے وہ ذرا مجھے بتائیں. اس جواب میں کہانی ہے, اس جواب سوال میں کوئی کہانی نہیں ہے. تو حضور 3 گھنٹے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا سو کہا, اگلے نے کیا کہا ہے وہ ہمیں بچائیے کہ اگلے نے اس پہ کیا کمٹمنٹ کی ہے اور کیا چیز کی ہے, کیا وہ پیش رفت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ورنہ اس قسم کی ملاقاتیں کرٹیسی کی ملاقاتیں سر بہت ہوتی ہیں. 3 گھنٹے کی بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس میں اچیو کیا کیا, ان کا جواب کیا ہے, ان کا موقف کیا ہے, ہمیں وہ دیکھنا ہے.
شکریہ, بہت شکریہ. اگلی 416-602-01778 کال کوئک. مجھے لگتا ہے میں پورا نہیں کر سکتی, یہ سوال لمبا ہو جاتا ہے, جواب دینے والا بھی شہزادہ ہے. پر میں بھی سزیم بھائی کوئی بات کر رہے تھے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو سٹینڈ لینا ہوگا, اور ہم تمام کو جیسے ہم اپنے بچے غلط بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بلے 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 بڑا صحیح ہے, آپ سپورٹ کریں اور انشاءاللہ تھنگز ول گو فائن. جی السلام علیکم. جی
ہیلو.
اگلی کال. السلام علیکم. اگلی کال کیا وجہ ہو گئی ماجی بھائی آپ کی ان لائن میں پرابلم؟
آواز آئی. جی ہیلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں جی میرا نام اعجاز ہے.
جی اعجاز بھائی.
عظیم بھائی جو ہیں بڑے اچھے ماشاء اللہ بہت ہر چیز کا ایکسپلین کر رہے ہیں, لیکن بیچ میں بہت ساری چیزیں میرا خیال عوام کو بھی ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن میں ایسی کہ فوج تو ہے ہی, بیوروکریسی بھی ہے, پلس اب ایک اور اس میں ایڈ ہو گیا کمپوننٹ, وہ ہے آپ کی لفافہ
جرنلزم
شامل کر لیں. آپ کوئی بات
نہیں. آئی لو یو. بڑے کمال کیے ہیں اعجاز بھائی, یو آر دا بیسٹ.
سو دس از نا, اب تین کمپوننٹس ہو گئے, اب تین میں آپس میں جھگڑا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت جو بیوروکریسی ہے مور دین 70% جو ہے پرانے لوگوں کے ساتھ چلنے والی ہے, جہاں سے بڑے لفافے بڑے بڑے بھاری بھاری
جنہوں نے ان کو پوزیشنز دی ہوئی ہیں.
پوزیشن نہیں ملی, پوزیشن کے ساتھ مال بھی بہت ملا ہے. پوزیشن تو ملتی ملتی ہیں, لائک سینئر لیول, موسٹ سینئر لیول کی پوزیشن ہیں. اور سیکنڈلی میں ان سے پوچھوں گا اپنا ساری عظیم بھائی سے, یہ سہیل محمود ہیں سیکرٹری, فورن سیکرٹری.
جی بالکل بالکل,
میرے پرسنل دوست ہیں, یونیورسٹی فیلو رہے ہیں. میں نے اس سے پوچھا تمہاری مجھے کبھی آواز سنائی نہیں دی یار, کہتا ہے مجھے بولنے نہیں دیتے.
یہ تو آپ کی ان کی دوستی ہے میں سمجھ گیا.
یہ انتہائی شریف آدمی ہے, بہت شریف آدمی ہے بےچارا. میں نے ایسے فورن سیکرٹری آج تک نہیں دیکھے جن کے منہ میں کبھی زبان ہی نہیں ہو.
نہیں حضور, ان کے منہ میں زبان ہے لیکن وہ ناپ تول کے بولنے کے عادی ہے. میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, یونائٹڈ نیشن میں وہ سرو کر گئے ہیں, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں. اگر آپ کے وہ دوست ہیں تو میرا سلام پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے.
انشاءاللہ
یہ کہ ریڈیو پر سے سلام پہنچایا گیا ہے
ہم نے نائٹ کرکٹ بھی کھیلی.
اور ہاں جی جاؤ, بلکہ وہ آئے ہوئے تھے, بلکہ نہ صرف آئے ہوئے تھے, عمران خان کے دورے پر بھی ان سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے بھی. تو ایک بڑا احترام کا رشتہ اور اچھے اچھے مطلب کہ سیزن ہے. وہ تو خیر آزادی تعلق رہا, باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا لفافے کی, یہ میں آپ کے ساتھ ایک کہانی نہیں ایک ایماندارانہ حقیقت شیئر کرتا ہوں کہ لفافہ مجھے بھی ملا ہے پیلا والا. تو میرے دوست جتنے پریس اتاشری ہیں رہے ہیں ان کو میں یہ کہتا تھا وہ چٹا لفافہ کہاں ہے, کہتے تھے جی آپ پیلے لفافے کے قائل ہیں جس میں پریس ریلیز ہوتا ہے خالی, اس کے علاوہ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں وہ بدقسمت لوگوں میں سے ہوں, سمجھ لیجئے آپ, یہاں خوش قسمت لوگوں میں سے, کہ میں یہاں یونائٹڈ نیشن میں رہا تو لفافہ یہاں تک نہیں پہنچتا. لفافہ اسلام آباد اور اس کے مضافات ہی میں مطلب ہے کہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس سے بے بہرا بھی ہوں, اور میں اس کیٹیگری میں اللہ کا فضل سے اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کیٹیگری میں نہ آنا چاہتا ہوں نہ آیا ہوں اور نہ آؤں گا, اس لیے کہ عمر کے اس حصے میں لفافہ لے کے وہ جائے گا کہاں, جیب میں لے کے مر گیا تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہوگی.
بہت شکریہ آپ کا اعجاز صاحب, آپ نے بڑے پیارے طریقے سے سوال کیا, بیوروکریسی کے ساتھ میری معلومات میں اضافہ کیا, جرنلسٹ بھی آ گئے. اور پاکستان کے جرنلسٹ آپ امیجن کیجئے, یہ مہنگا عظیم بھائی سن رہے ہیں, میں آنکھ بچے, عظیم بھائی از ناٹ انکلوڈیڈ. یہ مہنگائی کا جو رونا روتے ہیں نا, اپنے ان کے جہاز ہیں, اپنے ان کے فارم ہاؤسز ہیں, یہ جو جتنے جرنلسٹ رونا روتے ہیں مہنگائی کا, دے آر دا ریچسٹ پیپل ان پاکستان, دے جسٹ سیل نیشن, دے جسٹ ڈی فیم آر ادارے. اگلی کال. جی السلام علیکم. جی
السلام علیکم.
جی سوال, نام اور سوال.
جی محمود بول رہا ہوں. کیا حال ہے بھائی آپ؟
اللہ میاں صاحب سے بات کریں, میں تو نلائے حکم.
جی میاں صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ عمر کے اس حصے میں میں نے لفافہ لے کر, کیا پہلی عمر کے حصے میں لے سکتے تھے لفافہ؟
اس وقت آفر نہیں ہوا میرے بھائی, اس وقت آفر نہیں ہوا, اور اب لینا نہیں ہے, اب لینا نہیں ہے.
دوسری بات میری تو کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے جیسے مولوی حضرات ہیں, جب کوئی کسی کو آگ میں جلا دیتے ہیں یا کسی پہ حملہ کرتے ہیں, اس کے اوپر یہ کبھی بھی مسجدوں میں یا کہیں پہ تقریر نہیں کرتے کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسوہ حسنا ہے کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو,
یہ
کام کرو, نماز پڑھو. تو مگر جب سیاست کا آتا اس میں وہ بڑے بڑے پیٹ لے کے پیٹ کے اوپر رواز بھی نہیں پورا آتا, وہ آگے کے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں بڑی تقریریں کرتے ہیں, مگر تربیت کے اوپر زیرو तकरीर करते हैं।
थैंक यू सर।
और कहीं पे जी इस पे ज्यादा
मैं जी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। हमारी सोसाइटी में देखिए कोई भी सोसाइटी हो उसमें डाइवर्सिफाइड होता है। जैसे अभी आरवा ने कहा कि सहाफी, मैं इस वक्त एक ऐसे सहाफी को जानता हूँ जो यहाँ आपके इस शहर में कई साल गुजार के गया है और वो इस वक्त जो है उसकी कैफियत यह है कि घर का खर्चा चलाने से भी वो मतलब है कि कासिर इसलिए है कि वो हुकूमत की खुशामद नहीं कर सका। लिहाजा हुकूमत ने उससे वो जो भी प्रोग्राम वगैरह जो थे और उसको नौकरी से निकलवाने के बाद आपको ये भी पता है कि वहाँ बहुत सारे सहाफियों ने खुदकुशियां भी की हैं और जो खुदकुशियां की हैं वो लिफाफे के शौक में नहीं की हैं बल्कि इसलिए की हैं कि खुददार से और वो हुकूमत के कसीदे नहीं पढ़ सकते। जो भी हुकूमत है वक्त हो उसके कसीदे नहीं पढ़ सकते थे, नौकरी से निकाल दिए गए और उन्होंने खुदकुशियां भी की हैं, वो मतलब भूखे मर भी गए हैं, ऐसे भी हैं। तो हर सोसाइटी में हर तरह का आदमी होता है, नेक आदमी भी होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लिहाजा वो जो अगर आप उलमा की बात करते हैं तो वहाँ उलमाए हक भी मौजूद है लेकिन उलमाए सू भी मौजूद है और वो उलमा जो लालच में है वो भी मौजूद है।
सर गवर्नमेंट को क्या हो गया ये निकाह के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि किस नबी को मानते हैं, मतलब दिस इज मौलवियों का दिमाग खराब हो गया है कि अब निकाह दो मियां बीवी का हो रहा है।
हाँ जी।
तो उसमें कि प्रॉफिट किसको मानते हैं, ये एक कम्युनिटी को एलियनेट करने के लिए।
आरिफा जी एक बात, इमरान खान तो लिबरल आदमी है ना।
हाँ।
उसका एडवाइजर कौन है, ताहिर।
हाँ। अशरफी,
अशरफी साहब हैं, ठीक है। अब आप उसके बाद खुद देख लें कि ये नहीं तजादात जो हैं आपकी अपनी हुकूमत जो ये वादा कर रहे थे कि लिबरल हुकूमत लाएंगे, रोशन दिमाग हुकूमत लाएंगे, ये लाएंगे, वो क्या हुआ, सारे वादे यू टर्न हो गया, खत्म हो गया।
सर पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी बहुत बढ़ती चली जा रही है। वो कौन थे जो पीपल्स पार्टी के थे जिनको एक पाकिस्तानी आदर कादर नादर ने मार दिया था, 1 करोड़ लोगों ने जमा कर लिया था उसका मजार बनाने के लिए।
आपने मुझे, मैं आप वाकई याद दिलाया, आपने मुझे गुजरांवाला में एक आदमी को ईंटें मार मार के मार दिया गया
जी
और कहा जिसने कुरान की बहुमति की
दो लोग, हालांकि वो जो
श्री हाफिज कुरान था,
हाफिज
जिसको मारा है हाफिज कुरान था और उसने किसी को कर्जा दिया हुआ था
और
वो कर्जा वापस मांग रहा था।
एग्जैक्ट।
तो हुजूर ये इंतहा पसंदी तो है, ये तो वहशत तो है।
और सर जिस बंदे को वो जो श्रीलंकन जिसको मारा था वो इंटरनेशनल उसका कंपनी का दौरा था और वहां पे मशीनों के ऊपर, आप कनाडा में जो स्टिकर लगा के तो दिखाएं, आप मशीनों के ऊपर स्टिकर लगाए हुए थे सफाई का, उसने कहा था जिसके ऊपर उसने कहा जी ये तो इसने खत्म है, दिस मजहबी इंतहा पसंदी। सर किसी भी इदारे को डीफेम करने के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं कहती, पांचों उंगलियां जैसे आपने कहा सहाफियों के लिए बराबर नहीं है, तो पाकिस्तान फौज बेहतरीन इदारा है, ऑर्गेनाइज इदारा है, मगर इसको डिफेम करने के लिए तमाम वसाइल और जराए को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक इदारा जो कि हमें संभाल के बैठा हुआ है उधर भी बैठा, लोगों के दिल से वो माँ बाप का, आपका बेटा है आपका एहतराम करता है ना, अगर वो उस एहतराम को ख़त्म कर देंगे तो वो आंख की शर्म मर जाएगी। तो पाकिस्तान का एक इदारा जो हमको यूनाइट किए हुए है दैट इज़ आर्मी।
आरफी साहब वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं और हमें उसकी बड़ी लाजमी जरूरत है भाई, हमारा बॉर्डर कौन देखेगा, हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करेगा, हमारे साथ जो दुश्मन बैठा है वो बड़ा माइटी मतलब के दुश्मन है, हॉस्टल एरिया है, इधर तालिबान के वो जो है TTP वगैरह बैठी हुई है, हमें उनसे बचाना, बिल्कुल सही आप कहती हैं। लेकिन अर्ज यह है कि इसके दो वजूहात है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द के होस्टाइल ममालिक हैं उनका प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा
स्पेंडिंग एलोकेटिंग लॉट ऑफ फंड फॉर दैट,
नंबर एक। लेकिन अंदर जो है हम भी 33 साल के मार्शल्ला और उसके नताई से तंग आए हुए हैं। ये भी तो देखिए ना कि 33 साल आपके यहाँ मार्शल्ला लगता है।
लास्ट कॉल लेंगे हम आपकी, नहीं मैं आई एम सो सॉरी आई कैंट टेक, आपका सवाल लंबा हो जाता है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपके ऊपर की लाइनों को प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम, तीन बजे तो मेरा सलाम थे तुसी वक्त जाया करा देंगे
लोग वेट कर करके हैंग अप बहुत देर से वेट कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, बोलिए हजूर, कुछ बोलिए हजूर।
सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम अस्सलाम
जी। जी बाजी जी मैं अपने जावेद अर्ज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर माय कॉल। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਪੁੱਛ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾਨ ਸੀ ਆਟੇ ਦਾ ਬੁਰਾਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸਵਾਲ ਹੈ
ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਪੂਰੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲਈਏ
ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ
ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭੱਟੋ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੌਮ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ
ਸਵਾਲ ਫਰਮਾਓ
ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯੂ ਟਰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਝੂਠੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ
ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼
ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਭਾਜੀ ਝੂਠੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੋ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਫੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਗਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਫੀ ਨੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਸਾਫੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਓ ਜਵਾਬ
ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਨਾਬ
ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਤਾਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤੇਂ
ਇਸ ਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਕੀ ਕਿਆ ਉਮਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਖਵਾਜਾ ਨਾਜ਼ਮੁਦੀਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਥਾ ਉਸਕੋ ਕਾਇਦੇ ਕਿੱਲਤ ਕਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਆ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਥੀ ਤੋ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਜ ਕੀ ਔਰ ਬਦਲੇ ਚੀਨੀ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਹਰ ਦਫਾ ਜੋ ਹੈ ਨਯਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਉਸ ਪੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਫਿਊਚਰ ਕਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ
ਸਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇ
ਅਯੂਬ ਜੀ
ਉਹ ਕਹਤੇ ਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੰਨਾਟਾ ਇਸ ਪਰ ਵੀ ਹੈ ਸੰਨਾਟਾ
ਹਾਂ ਜੀ
ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਮਾਰਤੇ ਥੇ ਕੁੱਤਾ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਤਾ ਥਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਛੋਟੀ ਥੀ
ਇਹ ਅਭੀ ਜਾਨੇ ਵਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਨੋ 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 ਭਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਜਾਂ 6
100 ਰੁਪਏ ਮੰਨਾਟਾ ਤੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ
5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਮੇ ਥੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਮ ਸਭ ਭੈਣੋ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਐਪਟਾਬਾਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ
ਠੀਕ ਹੈ
ਤੋ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮਸੇ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਨਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥਾ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋ ਕੌਮ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੁਝੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਵੋ ਥੀ ਕਿਆ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬੁੱਕ ਹਮਨੇ 10 ਸਫ਼ੋਂ ਮੇਂ ਉਨਸੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੀਏ ਥੇ ਤੋ ਕਹਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਉਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਜਬ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਂ ਉਹਨੇ ਯੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾ ਥਾ I was dog when I was at your door. Nice. And you are dog while you are on my door. जी जी जी. So I don't want to meet dogs.
बल्कि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो मतलब है कि मुझे कुत्ता कहने वालों, ये कुत्ता बूढ़ा हो चुका है.
Exactly.
ठीक है ना.
मेरा कहने का मतलब है कि अयूब खान के दौर उनको हटाया ही किस लिए था कि मंगाई.
नहीं जी, उनको हटाया इसलिए था कि उन्होंने फ्रेंड्स नॉट मास्टर लिखी थी किताब.
अच्छा.
असल वजह है, अब तो डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं ना.
अच्छा.
बात यह है कि हम सुपरफिशियल बात करते हैं. अब उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ के वाले रिलीज हो गए हैं, और उसमें अगर आप पढ़े हैं तो फ्रेंड्स नॉट मास्टर जब उन्होंने लिखी है उससे पहले जो है अयूब खान साहब सबके पॉपुलर थे. अब मैं भाई साहब की तरफ मतलब कि अपने जो सवाल करने वाले इनकी तरफ आता हूँ कि देखिए, अगर कोई एक कार सर्विस देने वाला बंदा जो है वो चार एक्सीडेंट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बिरादरी को जो है आप मुर्दे इल्जाम ठहराएं. अखबार वाले जो है सहाफी के पास सिर्फ कलम के अलावा कोई गंडासा नहीं.